अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे फासिक कौन हैं, इनकी अब कुछ अलामतें हैं। अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बादी मीसाकी, पहली अलामत अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं। अगर आप 3 लाइनें लगाएं, बाद में कीजिएगा ये एक्टिविटी अपने नोट्स में, 4 कॉलम बनाएं अपने नोट्स में, मुत्तकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन और फासिकीन, और इन्हीं आयतों की रोशनी में इनके अमलों को टैली करें। मुत्तकी कौन थे? युमिनून बिल गैब, अल्लाह पर ईमान लाते हैं। और फासिक कौन है? यनकुदून अहदल्लाहि मिन बादी मीसाकिही, अल्लाह के साथ किए हुए अहद को तोड़ते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के साथ बंदे का कौन सा अहद है? क्या हम कोई अहद करके आए? जी किया। सूरत अल आराफ 172 में अल्लाह ताला इस अहद का तذکرہ करते हैं। वइज़हज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम, और जब लिया आपके रब ने बनी आदम से उनकी पुश्तों से वादा, यानी तफसील आप आयत खुद तर्जमा लिख लेंगे, कि जब हम सब रूहों की सूरत में थे ना, अगली आयतों में आ भी रहा तذکرہ उसका, हम सब जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो हमारे बाप थे उनकी पुश्त में थे रूहों की शक्ल में, तो अल्लाह ताला ने एक हाथ फेरा था और क्यामत तक पैदा होने वाले इंसान रेत के जर्रों की तरह बिखर गए थे। जैसे बाहर आपके बर्फ के जर्रे बिखरे हुए ना, इस तरह क्यामत तक पैदा होने वाले इंसानों की रूहें जो थी वो बिखरी थी। फिर अल्लाह ताला ने उन सब से ये वादा लिया था कि अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो हम सब ने, चाहे बाद में मोमिन बने, काफिर बने, यहूदी, नसरानी, मुसलमान, मजूसी, एथियस, दुनिया में हर पैदा होने वाला बच्चा, हम सब ने क्या कहा था? कालू बला शहिदना, क्यों नहीं अल्लाह ताला हम इसकी गवाही देते हैं। और साथ ही ये अल्लाह ताला कहते हैं कि ये गवाही इसलिए ली थी कि कल क्यामत के दिन ये ना कह दो कि हम तुम्हारी इबादत से गाफिल थे, या हमें इसका पता ही नहीं चला तू था। तो पता क्या चला कि अल्लाह के साथ जो अहद है ना, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का अहद है। हम जब मुसलमान होते हुए कलमा पढ़ते हैं या दुनिया में आए तो हमारे कान में अजान कही गई, असल में ये इस अहद की तरफ इशारा है कि फासिक की पहली अलामत है कि वो अल्लाह के साथ अहद कोई तोड़ देते हैं। ये ऐसी है कि एक औरत निकाह करने के बाद निकाह कोई तोड़ दे, बस खत्म, मेरे से नहीं इसकी जिम्मेदारियां निभाई जाती, ये टूट गया, ठीक है। अब इसके बाद ये फिस्क हुआ अल्लाह ताला के साथ। फिर इसके बाद अगली सिफत इन आयतों की रोशनी में पहले देख लेते हैं, वह और क्या करते हैं? यक्तऊना मा अमरुल्लाहु बिही अन युसला, और वो चीज़ तोड़ते हैं जिसको अल्लाह ने मिलाने का हुक्म दिया था। ये क्या चीज़ थी? इसमें अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक का मिलना, अल्लाह से ताल्लुक, मोहब्बत का मिलना, और दूसरी चीज़ इसमें आती है इंसानों के साथ ताल्लुकात जोड़ना, रिश्तेदारियों को जोड़ना। सिला रहमी की बात बहुत ज़्यादा कुरान पाक में आती है, लेकिन हुआ क्या कि माल की तलब में और उस माल को बढ़ने की कोशिश में भाई भाई का दुश्मन हो गया, माँ बच्चों की शक्ल देखने से महरूम हो गई, बीवियाँ कई कई महीने, कई कई साल तक शौहरों से दूर रहने पर मजबूर कर दी जाती हैं क्योंकि मर्द माल कमाने दूसरे मुल्कों में गए हुए हैं। नतीजा क्या हुआ कि दीन का ताल्लुक टूट गया। अल्लाह ने कहा था कूनू इबादल्लाहि इख्वाना, अल्लाह के बंदे भाई भाई बन के रहो, लेकिन इन्हीं रिश्तेदारियों को तोड़ के फासिक अपनी जिंदगी में मगन हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि फासिक कौन है कि ना अल्लाह से जुड़ता है ना बंदों से जुड़ता है। और तीसरी उसकी बुराई क्या है? वह युफ्सिदून फिल अर्द, फसाद फैलाते हैं जमीन में। ये कौन सा फसाद है? ये वो फसाद है कि जो ताल्लुकात के बिगाड़ से पैदा होता है, अल्लाह और बंदे के ताल्लुक का टूटना और बंदों के ताल्लुक का टूटना, ये है बिगाड़। रिश्तों की तमीज़ मिट गई, माँ बाप के रिश्ते में फ़र्क आ गया, पहले बाप की निगाहों में जो हया दिखती थी अब नहीं दिखती, पहले भाई जो गैरत के नाम पे बहनों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे अब उन बेचारों की जरूरत ही नहीं है। ये है वो फसाद जो फिस्क के नतीजे में फैलता है। पीछे मच्छर की बात हुई, यहाँ फासिक की बात हुई, अगर देखा जाए तो दोनों में मुमासलत है। जैसे मच्छर किसी सोसाइटी का डंक होते हैं ना, खून चूस लेते हैं, इस तरह फासिक भी उस सोसाइटी का खून चूस लेते हैं। और फासिक बहुत ज़्यादा नहीं होते, प्रोमिनेंट फेसेस होते हैं थोड़े से। कहाँ देखने? आप कोई भी वीकली मैगजीन देख लें, आप कोई ऐसा रिसाला देख लें जो फैशन को प्रमोट करने वाला है। चंद नाम है, कुछ इंडस्ट्रीज के चंद चमकते हुए सितारे होंगे, कुछ शोरे आफाक पे पहुंचने वाले मशहूर किस्म के लोग होंगे कि जो कभी अपनी आवाज से और कभी अपने हुसन से और कभी अपनी हरकतों से दुनिया को माइल करते हैं। किस तरफ? हमारी तरफ आओ। नतीजा क्या है? औलाइक हुमुल खासिरून, खसारे वाले, नुकसान वाले, बैंक करप्ट लोग। वहां क्या था? मुफ्लिहून। मोमिन क्या थे? मुफ्लिहून। काफिर क्या थे? वलहुम अजाबुन अजीम। मुनाफिक क्या थे? अजाबुन अलीम। और खासिर क्या है? खसारा, मुकम्मल खसारा। यहाँ पे वो चार गिरोह पूरे होते हैं कि जिनके जरिए से ये दुनिया चल रही है। कौन कहाँ क्या करे, मोमिन जो है वो दुनिया में अमन के पयाम्बर है, इन्हीं की वजह से पीस है दुनिया में। और फसाद और बिगाड़ जो है ये फासिकीन के नतीजे से है। फासिक काफिर भी हो सकता है, मुनाफिक भी हो सकता है, और गुनाहगार मुसलमान भी हो सकता है। आप कह सकते हैं कि फासिक से पाबंदियां बर्दाश्त नहीं होती, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना चाहता, वो कहते हैं मैं अपनी मर्जी करना चाहता हूँ, मुझे ना कोई रोके। फिर आप देखिए कि इन अल्लाह के साथ फिस्क की सूरत शिर्क है, कुफर भी हो सकता है, लेकिन इंसानों के साथ फिस्क क्या है कि इंसानों के हक ना देना, उनकी बजाय अपनी मर्जी पे रहना, अपने घरों में इतनी ऊंची आवाज से म्यूजिक चलाना कि नेबर्स में कोई सो ही ना सके, कोई बीमार है और आप इंजॉय कर रहे हैं, दूसरे का अमन छीनना, उसका सुकून छीनना, ये इसका फिर दायरा बढ़ता है। आप देखिए एक इंसान है ना, उसके इर्द गिर्द एक दायरा है, उसके साथ रहने वाले। सोचिए क्या मेरी वजह से मेरे घर वाले, मेरे इर्द गिर्द वाले कहीं सताए तो नहीं जा रहे? फिर उसके बाद आपके गली वाले, मोहल्ले वाले, फिर आपके मुल्क वाले, और होते होते पूरी दुनिया के लोगों पे आपका असर आता है, हत्ता के जानवरों पर भी इंसान के गुनाहों का असर आता है। हदीस में आता है कि बाज इंसानों के गुनाहों की वजह से करीब है कि जानवर अपनी बिलों में मर जाएं। बाज रिवायतों में आता है कि अगर जानवरों का ख्याल ना हो तो लोगों के गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला बारिश को रोक ले। तो सारे सबक का खुलासा क्या निकला कि हमने ना तो अपनी हदों से आगे निकलना है और ना दूसरों की हदों में जाना है, ना किसी को इजाज़त देनी है इस बात की कि वो हमारे और अल्लाह ताला के ताल्लुक के बीच में आए, और ना हमें अपने आप को इस दूसरों के लिए फितना बनाना है। यहाँ पे वो टॉपिक पूरा हुआ जो पहली आयत से शुरू हुआ था। आगे देखेंगे आयत नंबर 28 से। كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون। किस तरह तुम कुफर कर सकते हो हालांकि तुम मुर्दा थे, फिर इसने तुमको जिंदा किया, फिर वो तुम्हें मारेगा, फिर जिंदा करेगा, फिर तुम इसी की तरफ लौटा दिए जाओगे। मुराद क्या है कि फिर नशुक्री क्यों करते हो? पीछे अल्लाह ताला ने इंसानों को अपने वजूद के दलाइल दिए, रिसालत के दलाइल दिए, और वो लोग जो हक के रास्ते में मुखालफत करते हैं उनका इंजाम बताया। अब इसके बाद इंसान को उसकी असल दिखाई जा रही है, और मुझे तो ऐसे लगता है कि इंसान की सारी अना और उसके तकब्बुर को तोड़ा जा रहा है। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं जब भी इस आयत को बड़े लेयर मूड में, बड़े फारिग होके अकेले में पढ़ूं तो मुझे बिल्कुल यही फीलिंग्स आती हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ओ इंसान, तुम अपने आप को समझते क्या हो? इतने बड़े बनते हो, इतना इनकार है तुम्हारी जिंदगी में, ना अल्लाह को मानते हो, ना अल्लाह के हुक्म को मानते हो, तुम थे क्या? कई फतक फुरू ना बिल्लाही, तुम्हें जरूरत कैसे हुई अल्लाह का इनकार करने की? पीछे जिनका तस्करा था वो फासिकीन थे, जो बज़ाहर अल्लाह ताला का इनकार नहीं करते लेकिन वो अल्लाह के रसूल का इनकार करते हैं, या फिर अल्लाह ताला के रसूल के ज़रिए से जो अहकामात मिली उनका इनकार करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं इनसे पूछो तुम थे क्या? वकुंतुम अमवातन, तुम मुर्दा थे। कब थे, क्या थे? इस दुनिया में आने से पहले। ये आलम अरवाह की बात है। अमवात का लफ्ज़ मैयतुन की जमा है, मुर्दा और बेजान चीज को कहा जाता है। अगर देखा जाए तो हर इंसान की जिंदगी में चार مختلف دور گزرتے ہیں. پہلا دور جس کا ہم سب کو شعور نہیں تھا، یہ کون سا تھا؟ جب ہم عالم ارواح میں تھے، اسپرٹس کی فارم میں تھے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں اس دور کے بارے میں یہ الفاظ آتے ہیں، الارواح جنودم مجندہ، روحیں جو تھی وہ جمع شدہ لشکروں کی صورت میں تھی. ہم سب دنیا میں آنے سے پہلے اپنے باپوں کی پشت میں تھے اور اس وقت کا ہمیں شعور نہیں. اسی وقت میں اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ لیا تھا ہم سے، جس کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں گزر گیا، کہ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یعنی اللہ کے عہد کو پکا کرنے کے بعد توڑتے ہو. اب مجھے اور آپ کو وہ وقت نہیں پتا، لیکن وہ گزر چکا. اس کے بعد فاحیاکم، یہ ہے دوسری کیفیت جو اس وقت میری اور آپ کی ہے، اس دنیا کی زندگی، پیدائش سے لے کر موت تک کا وقت، یہ ہے احیاکم. پھر ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا. یہ کون سا وقت ہوگا؟ جو اس دنیا میں ہمیں موت آئے گی، ہم سب کے سامنے بے بسی کی حالت میں خالی ہاتھ اپنے اعمال کو لے کر ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں گے. اور اس کے بعد ثم یحییکم، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا. برزخ کی زندگی ہے، اس پہ لکھ سکتے ہیں آپ قبر کے اندر جو وقت گزارنا ہے، کیونکہ اس کے بعد ثم الیہ ترجعون، پھر تم کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، یہ ہے حشر. میں دوبارہ ضمائر لکھاتی ہوں، آپ نوٹ کریں. کنتم امواتن، لفظ اموات کے نیچے ایک ڈاؤن ایرو لگائیے اور لکھیے روحوں کی شکل میں، عالم ارواح. پھر فاحیاکم نمبر ٹو ڈالیے، پیدائش سے لے کر موت تک کا وقت. ثم یمیتکم، تیسرا مرحلہ ہے، یہ ہماری موت کے لمحے، نزاع کا عالم جب شروع ہوتا ہے اس سے لے کر انسان کے دفن سے پہلے کی گھڑیاں. ثم یحییکم، دفن کرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کا وقت، اس کو اصطلاح میں برزخ کہتے ہیں. قبر کی زندگی، برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ، یعنی اس زندگی کی حقیقت ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارا ایمان ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے یہ بات ملتی ہے کہ مردے کو دفنانے کے بعد ابھی قبرستان سے ہٹے بھی نہیں ہوتے لوگ کہ مردے کو زندہ کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے اوپر والوں کے قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے. تو وہ کون سی زندگی ہے؟ اس کو آج ہم دنیا میں نہیں ریلیٹ کر سکتے. کوئی اس سے کوئی مثال لے کر یہ کہے کہ آپ قبروں پہ جا کے مانگیں اور مدد طلب کریں، ایسی بات نہیں ہے. وہ زندگی ہے جو اس زندگی سے بالکل فرق ہے. اور اس کے بعد ثم الیہ ترجعون، اس سے پانچویں کیفیت ہے کہ قیامت کے بعد سب اللہ کی طرف جائیں گے. یہ ہے انسان کی اوقات، نہ دنیا میں اپنی مرضی سے آیا، ہم میں سے کسی نے اپنی زندگی کا، پیدائش کا وقت چوز نہیں کیا. ماں باپ کتنی خواہش کیوں نہ رکھیں کہ فلاں دن بچہ پیدا ہو جائے کیونکہ فلاں ڈیٹ ہمارے لیے میموریل ہے، نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے. اسی طرح کوئی اس دنیا سے اپنی مرضی سے جاتا بھی نہیں ہے، جتنی مرضی تمنا کر لیں. بعض دفعہ بچوں کی شادی کے دن ماں یا باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، بعض دفعہ شادی کے دن دولہا یا دلہن میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے. کوئی اپنی مرضی سے نہ رک سکتا ہے نہ رہ سکتا ہے. تو بات تو وہی ہے نا، چند سالوں کی جو ہماری موت اور حیات کے بیچ کے ہیں. کسی کے پاس 40 ہیں تو کسی کے پاس 50 ہیں، کسی کے 60 ہوں گے لیکن کسی کے تو 20 بھی پورے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی بے بسی کا خیال دلواتے ہیں کہ دیکھو، نہ تم دنیا میں اپنی مرضی سے آئے نہ تم اپنی مرضی سے جاؤ گے، تو پھر تم دنیا کے جو چند سال ہیں یہ اللہ کی مرضی کے منا لو، کیا فائدہ ہوگا؟ آج اس دنیا کو تم میری مرضی سے بنا لو، کل جو اگلی دنیا ہوگی ثم الیہ ترجعون کے بعد، وہ میں تمہاری مرضی کی کر دوں گا. اسی کو علاوہ اقبال نے بھی ایک شعر میں کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. جو بندہ دنیا میں اللہ کی رضا پوچھ پوچھ کے جیتا ہے نا، کل اللہ اس سے بھی پوچھ پوچھ کے اس کی جنت بنائے گا. اور جو انسان دنیا میں اللہ کے حکموں کے مطابق جیے گا، کل جنت میں اللہ تعالیٰ اس کی چاہت کے مطابق اس کو زندہ رکھے گا. یہاں ایک بڑا دلچسپ سا نقطہ ہے، میں اس پہ توجہ دلانا چاہوں گی कई फतक फुरून बिल्लाही व कुंतुम अमवातन फा अहयाकुम। ये लफ्ज़ जो फा है ना, ये बाद के लिए आता है ना, जैसे इसके बाद। लेकिन इसके अगले लफ्ज़ में देखिए सुम्मा युमीतुकुम, लफ्ज़ असल में फा और सुम्मा का फ़र्क बताना चाहती हूँ। समझ याद रहे तो रहे, ना रहे तो अल्लाह ताला के कलाम की मोहब्बत दिल में ज़रूर बढ़नी चाहिए कि इसका एक लफ्ज़ भी बेमानी नहीं। अरबी ज़ुबान का असूल है कि फ्यूचर के लिए दो लफ्ज़ आते हैं, एक फा का, जैसे तुम ये काम करोगे, और दूसरा आता है सुम्मा, देन के मानों में, इंग्लिश में देन, देन यू विल डू दिस। सुम्मा के अंदर ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, कुछ वक्त गुजरने के बाद कुछ काम करना। मतलब मैं आप में से किसी से कहूँ कि अभी क्लास ख़त्म करते ही हम जोहर की नमाज़ पढ़ेंगे, क्यों? मैंने कहा कि क्लास के ख़त्म होते ही फ़ौरन जोहर का वक्त है। ये यहाँ फ़ा कहेंगे कि हम क्लास ख़त्म करेंगे, फ़ा नमाज़ पढ़ेंगे, या फसल्लैना, ठीक है? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हम क्लास ख़त्म करेंगे सुम्मा हम ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे, फ़र्क मिलेगा दोनों में? फ़ा क्या है? क्लोजनेस। और सुम्मा क्या है? बोथ, दूरी का माना। अल्लाह ताला ने जहाँ पहली बात की कि कुंतुम अमवातन फअहयाकुम, तुम मुर्दा थे फिर अल्लाह ने तुमको पैदा किया, क्यों? कि पिछली मौत यानी रूहों की कैफियत और इस जिंदगी के बीच में कोई फासला नहीं था, लेकिन फअहयाकुम के बाद सुम्मा युमीतुकुम में क्या है? अगर आप बड़े गौर से इस लफ्ज़ को देखें ना, तो मेरी और आपकी जिंदगी के टोटल दिन साल महीने कितने? सुम्मा। ये सुम्मा में हमारी दुनिया छुपी हुई है कि तुम्हें पैदा किया सुम्मा युमीतुकुम, चंद साल तुमने गुजारे और उसके बाद अल्लाह ने तुम्हें मौत दे दी कि अब तुम इसके बाद वापस अल्लाह के पास जाने लगे हो। फिर सुम्मा युहयीकुम, फिर कुछ अरसे के बाद तुम्हें जिंदा करेगा, और सुम्मा इलैहि तुरजाउन, वो वक्त जो कब्रों में गुजारोगे। इसी का तذکرہ सूरत मोमिन या सूरह गाफिर भी उसको कहते हैं, आयत नंबर 11 में आता है कि अहले जहन्नम जो हैं वहां जाकर ये बात कहेंगे कि रब्बना, ए हमारे रब, तूने हमें दो मर्तबा मौत दी और दो मर्तबा हमें जिंदा किया, अब हमने अपने गुनाहों का इतराफ कर लिया, तो क्या यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है? तो हकीकत यह है कि कोई रास्ता नहीं। इस दुनिया में आने से लेके आखिरत तक पहुंचने का रास्ता वन वे है, कोई यू टर्न नहीं, कहीं से आप रोड बदल नहीं सकते। जो इस रास्ते पे चला वो आगे जाके इलैही तुरजाउन पे रुकेगा, पलट नहीं सकता। इस ट्रैक ने हमें एक और बात सिखा दी कि दुनिया से जाने के बाद कोई शख्स वापस नहीं आ सकता कियामत से पहले। एक बहुत बातिल अकीदे का रद इसमें मिल गया इशारतन, कि जो लोग कहते हैं कि कुछ लोग मर जाते हैं, फिर उनके मरने के एक हफ्ता बाद आप उनको जुमेरात के दिन बुलाएं तो वो खुशी खुशी आते हैं अपनी मनपसंद चीज़ें खाने के लिए, फिर सवा महीना जब होता है 40 दिन के बाद आप दोबारा उनके पसंदीदा खाने पका के बुलाते हैं तो वो आते हैं, और इसी तरह साल के बाद भी आते जाते रहते हैं। तो ये आयत उसका रद्द है। आप देख लीजिए, कोई ये नहीं कहा कि पलट के आओगे, ये आगे से आगे का सफर है, और ये मजमून आगे सूरत हज में भी आएगा। यहाँ मैंने सिर्फ इशारतन बात कर दी, तो गोया कि तुम्हें इस दुनिया से एक ख्वाब की तरह गुजर जाना है, असल जिंदगी तुम्हारी आगे है। जैसा ये वक्त गुजारोगे इसी के ऊपर तुम्हारा अगला वक्त गुजरेगा। बच्चा माँ के पेट में अभी 4 माह का होता है कि फरिश्ता आके और उसके अंदर रूह फूंक देता है, फिर 40 दिन के बाद उसके जिस्म में तब्दीलियां आती हैं, और इस तरह एक इंसान इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाएगा, उसको नहीं पता चलेगा। हल्की सी अगर इसको मिसाल दे दूं कि जैसे माँ के पेट से एक बच्चा दुनिया में आता है ना, तो आप देखिए कि दुनिया वाले खुश हो रहे होते हैं क्योंकि बच्चा पैदा हुआ, सब खुश हैं, कोई माँ, कोई नानी, कोई दादी, कोई दादा। लेकिन बिलफर्ज उस बच्चे के साथ पेट में एक ट्विन बच्चा भी हो, बार दफा होते हैं दो बच्चे, 9 महीने के करीब वक्त उन्होंने साथ गुजारा, उनकी दोस्तियां हो गई, बातें चीतें। अब वो दोनों बच्चे अगर उनसे कोई पूछे कि बताओ भाई दुनिया किस चीज का नाम है, तो वो कहेंगे बस ये एक दो बालिश जगह जो माँ का रहम है। उन्हें कि और क्या होता है, वो कहेंगे कुछ ब्लड, जो पेट के अंदर चीजें मौजूद हैं। वहां कोई बैठ के उनको कहे कि देखो तुम्हें पता है पहाड़ भी एक चीज होते हैं, बहुत बड़े बड़े, K2 पहाड़, माउंट एवरेस्ट, तो वो बच्चे मानेंगे? कहेंगे जोक करते हो, हम तो इतनी नरम नरम चीजें इधर देखते हैं, हमने तो कभी यहाँ पहाड़ों का तसव्वुर नहीं किया। आपके आपको पता है एक और चीज भी होती है, वो क्या है, समंदर। इतना पानी होता है कि एक किनारे से दूसरा ना दिखे। वो कहेंगे यू आर जोकिंग, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इतना ही नहीं किया। लेकिन जब वक्त पैदाइश का आता है, उनमें से एक बच्चा दूसरे के सामने दुनिया में आ जाता है, हम खुश हैं। लेकिन अगर उस पेट में मौजूद दूसरे बच्चे को कोई पूछे, भाई सुनाओ आज तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो वो रोएगा, कहेगा आज मेरा भाई फौत हो गया, 9 माह से मेरे साथ था, आज दुनिया से चला गया। उसे कि नहीं बेवकूफ, ऐसे नहीं को, वो मरा नहीं है, बस इस छोटी सी दुनिया से एक बहुत बड़ी दुनिया में आ गया, जहाँ सूरज है, जहाँ चांद है, जहाँ पहाड़ है, जहाँ नियाग्रा फॉल है, जहाँ कुछ भी है। तो उसके लिए ये तस्वुर अजीब है ना। लेकिन जो दुनिया में बच्चा आता है, कुछ सालों में उसको ये दुनिया अच्छी लगने लगती है। अब उसको पहाड़ों का भी पता चल गया, सूरज चांद का भी पता चल गया। अब बिल्कुल यही कहानी दोहराई जाती है जब हम इस दुनिया से आगे जाते हैं। माँ का पेट एक छोटी सी कब्र थी, उसमें से हम निकले, इस खूबसूरत दुनिया में आ गए। कोई कहाँ पड़ गया, कुछ दिन हम यहाँ गुजारते हैं, यहाँ भी मानूस ही होने लगते हैं ना। अभी थोड़ा दिल को अच्छी लगती है दुनिया, तो मौत का वक्त आ जाता है कि सुम मयूमी तुकुम, चलो जी फिर एक और डिलीवरी का वक्त है। लेकिन ये डिलीवरी इधर से जाके दूसरी दुनिया में जाएगी। जैसे पेट का बच्चा ना रो रहा होगा अपने भाई के मरने पे, इस तरह जब हम इस दुनिया से अगली दुनिया में जाते हैं, तो यहाँ वाले रो रहे होते हैं। कोई कहता मेरी माँ चली गई, कोई कहता बाप चला गया, कोई कुछ कहता है। लेकिन जो आगे का दौर है ना, जो हमारे वहां पहले से फौतशुदा लोग हैं, जिनके साथ ताल्लुक हमारा होगा, वो डिटेल आगे होगी, सिर्फ बात समझाने के लिए इस वक्त छेड़ दी, तो वो खुश हो रहे होते हैं कि आज हमारा भाई आ रहा है, आज हमारी माँ आ रही है, आज ये हो रहा है। अब जिस बंदे को दुनिया में कोई कहे कि तुम्हें पता है कि जन्नत वो है कि तजरी मिन तहती हल अनहार, दूध की नहरें, पिछली आयतों में देखी ना आपने, दूध की नहरें, शहद की, आज हम नहीं मानते ना, लेकिन जो वहां जाएगा वो देख लेगा, बिल्कुल ऐसी जैसे इस दुनिया में आए तो देख लिया। तो ये 4 दिन की दुनिया, अल्लाह के नबी ने कहा कुन फिद दुनिया का नक गरीबन ओ आबिर सबील, इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम गरीब हो, अजनबी, स्ट्रेंजर, तुम्हें कोई नहीं पहचानता, तुम किसी को नहीं पहचानते। आप देखिए कि दुनिया में जब हम आते हैं किसी नई जगह, तो हमें कोई नहीं जानता, हमें केयर ही नहीं होती हमारे घर में सोफा है कि नहीं है, आना ही नहीं किसी ने। आप कुछ भी रखें, कुछ पहने ओढ़े, जो मर्जी करें, कोई भी नहीं, जो लोगों के लिए करते हैं वैसे ही होते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब दोस्तियां होती हैं, लोग आपके पास आ रहे हैं, आप जा रहे हैं, फिर घर भी बढ़ते हैं, फिर सामान भी बढ़ते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं इस दुनिया में कान का गरीबन अजनबी स्ट्रेंजर औ आबिर सबील ट्रांजिट पैसेंजर, जिसको यहां से पाकिस्तान जाना है तो रास्ते में 2-3 घंटे के लिए दुबई एयरपोर्ट पे रुकना है। उस 2-3 घंटे के लिए वो क्या जमा करेगा, कुर्सियां, मेज, सोफे, घर बनाएगा? वो कहेगा जो वक्त तो जल्दी से जाऊं। और कोई ये भी नहीं चाहेगा कि बिला वजह मुझे वहां 8-10 घंटे का स्टॉप मिले। वो कहेगा बस एक जहाज से निकलूं अगले में जाऊं। क्यों? कि नजर तो मंजिल पे लगी हुई है ना। जिनकी नजर सुम इलई ही तुर जाऊन पे होती है, उनको इस दुनिया का घंटा आबिर सबील जैसा लगता है, फिर वो पाँव नहीं पसारते, फिर वो आगे से आगे जाना चाहते हैं। और ऐसे बंदे की निगाहें जब अल्लाह पे लगती है ना, तो अल्लाह ताला ऐसे बंदों को खुशखबरियां देता है कि देखो इंसान, तुम्हारी जिंदगी है तो बड़ी मुख्तसर सी, लेकिन मैंने तुम्हें इज्जत कितनी दी। आयत 29 में हुवल्लज़ी खलक लकुम मा फिल अर्दी जमीया, अल्लाह वो है जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए वो सब कुछ जो जमीन में, सब कुछ तुम्हारे लिए पैदा किया। एक रिवायत का खुलासा भी है कि इन दुनिया खुलिकत लकुम वान तुम खुलिक तुम लिल आखिरा, बेशक ये दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई और तुम आखिरत के लिए बनाए गए। अगली आयतों में चूंकि आदम अलैहिस्सलाम का तस्करा आने वाला है, अल्लाह ताला ने उनके पैदा करने से पहले ये खबर दे दी कि इंसान, ये दुनिया मैंने तुम्हारे लिए बनाई, सब कुछ तुम्हारा है। ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे शादी के बाद एक शौहर अपनी बीवी को खूबसूरत सजा सजाया घर दिखाए और कहे कि देखो ये मैंने तुम्हारे लिए सजाया है, ये तुम्हारे आने से पहले सजा दिया। अल्लाह को अपने बंदों से इतनी मोहब्बत थी कि उसने उनके दुनिया में आने से पहले सारी दुनिया सजा दी। और इसका एक फायदा भी हुआ, और वो क्या, कि कोई दुनिया में आने के बाद ये शिर्क ना करने लगे कि सूरज मैंने बनाया, चांद मैंने बनाया। आप देखिए दुनिया में बड़े बड़े मुशरिक गुजरे, फिरौन जैसे, नमरूद जैसे, शद्दाद जैसे, उन्होंने अना रब्बुकुम अला का दावा किया कि हम तुम्हारे रब है, लेकिन किसी ने आज तक ये दावा नहीं किया कि सूरज मैंने बनाया। लोग अपने आप को सूरज का अवतार तो कहते हैं, सूरज बनाया नहीं। क्यों? क्योंकि सब कुछ इंसान से पहले बन चुका था। तो अल्लाह ताला कहते हैं, देखो मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ बना दिया, खलकलकुम। इस लफ्ज से फिर कुछ लोगों ने इस बात को भी लिया कि अल्लाह की जात ने चूंकि सब कुछ इंसान के लिए बनाया, तो लिहाजा कायनात की हर चीज इंसान के लिए हलाल है। एक बहुत छोटा सा सूल इसमें से निकलता है, और वो क्या कि दुनिया की हर चीज, असलुल अशियाई इबाहतुन, चीजें अपनी असल के एतबार से मुबाह हैं, हलाल है। आप सब्जी खा सकते हैं, आप आलू खा सकते हैं, आप भिंडी खा सकते हैं, आप फ्रूट खा सकते हैं। कब तक नहीं खा सकते? अगर किसी चीज के ऊपर कोई दलील मिल जाए। बात थोड़ी मुश्किल है, अभी आपके लिए समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो छोड़ दें। इस बात पे के खलक लकुम मा फिल अर्दी, मैंने तुम्हारे लिए पैदा किया। अब कोई आपसे कि ये खाना मैंने आपके लिए बनाया, तो क्या इसका ये मतलब कि फिर आप खाएंगे तो कोई आपको रोकेगा? मतलब ये कि आप खाइए। कायनात पूरी की पूरी अल्लाह ने सजा दी और सब कुछ हलाल है। हाँ, किस चीज को हराम समझेंगे जिस पे उसी रब ने कह दिया है सब कुछ तुम्हारे लिए, लेकिन ये ना खाइएगा। या ऐसे जैसे आप बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल सजाएं, मेहमानों को बुलाएं और उन्हें कहें कि ये सब कुछ आपके लिए, बस ये दो डोंगे जो ना इनको छोड़ दें, ये फलां के लिए हैं जिसका ब्लड प्रेशर हाई है और इसमें नमक नहीं, या ये उसके लिए जिसको शुगर है, व्हाट्स एवर। तो कायनात की हर चीज हलाल है। आप मशरूम देखते हैं, आप कहते हैं हलाल है कि हराम है? फौरन कुरान और सुन्नत में झांकेंगे, क्या मशरूम की हुरमत पे कोई बात है? नहीं। लोग कहें भाई बताइए मशरूम हलाल कैसे है, खुम्बियां जिसको बोलते हैं, क्या कुरान की कोई आयत या हदीस है कि मशरूम खा सकते हो? हालांकि मिल जाती हैं हदीसें भी, लेकिन ना मिले तो समझे कि वो हलाल है। आपको 10 किस्म का साग मिलता है मार्केट में, आप कहते हैं कैसे साबित होता है ये हलाल है कि हराम? कह इसलिए कि हलक अलकुम, मैंने तुम्हारे लिए पैदा किया। बस कहते हैं नहीं इसलिए नहीं इसके बाद भी, लेकिन आसान सी बात याद रखिएगा कि अल्लाह ने जो कुछ हमारे लिए पैदा किया है ना, उसके अंदर उस फायदे भी हमारे लिए रख दिए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह ताला किसी चीज की फिर हिल्लत या हुरमत भी पेश करता है, और इसकी डिटेल सूरत मायदा में इंशाल्लाह आएंगी। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बस अब तुम इससे फायदा उठाओ, मजा उठाओ। सुम मस्तवा इलस्समा, फिर कसत पकड़ा आसमान की तरफ, इरादा किया। फसवाहुन्न सब असमावात, फिर उसने हमवार कर दिया इसको 7 आसमानों में। वह हुवा बिकुल्ली शयइन अलीम, और वो हर चीज को जानने वाला है। पहले जमीन बनी, इसे एक मसला यह अखज हुआ कि पहले जमीन बनी, फिर जमीन की चीजें बनी। सुम्मा स्तवा, फिर सुम्मा आ गया ना, क्या मतलब है सुम्मा का? बोध, थोड़े अरसे के बाद। इस आयत से भी और कुरान पाक की कुछ और आयतों से भी ये पता चलता है कि पहले जमीन बनी थी फिर आसमान बना। हालांकि एक आयत ऐसी आती है कि जिससे थोड़ा सा शुबा पड़ जाता है, सूरत नाजियात में आता है, वल अर्द बाद अज़ालिका दहाहा, आयत नंबर 3 है उसकी, कि पहले जमीन को फैलाया और फिर उस पर किया, लेकिन तरतीब के, वैसे तो ये आयत मुतशाबिहात में से है, इस पर कोई बहुत ज्यादा बात की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन मफहूम समझ आता है कि जब ये कायनात बनी थी सबसे पहले जमीन बनी थी, फिर जमीन के ऊपर की चीजें बनी थी, और उसके बाद आसमान बने, और अल्लाह ने आसमानों को 7 बनाया। इससे देखिए 7 हेवन का नजरिया भी समझ आता है। आज के दौर में एक नजरिया दिया जा रहा है कि 9 आसमान है और आसमान की लेयर 9 या 11 या 12, तो ये आयत जो है इसका भी रद्द पेश करती है कि 7 थी हैं, और साथ ही कहा कि अल्लाह ताला ने अपने लिए आसमानों को पसंद किया, और इतनी दूर जाने के बावजूद भी इंसानों को, उनके हालात को, उनके दिलों को जानता है। कोई ये ना सोचे कि रब दूर है। वह हुवा बिकुल्ली शयइन अलीम, वो हर चीज को जानने वाला है। हम घर से बाहर आ जाते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि पीछे घर वाले क्या कर रहे हैं। हम एक कमरे में होते हैं, हमें दूसरे कमरे वालों की खबर नहीं होती, लेकिन अल्लाह की जात कैसी अलीम है कि 7वें आसमान पे मौजूद होने के बावजूद पहाड़ की खो में मौजूद किसी चींटी के हाल को भी जानता है। कौन भूखा है, कौन प्यासा है, अल्लाह को हर एक की खबर है। इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह ताला ने कोई चीज बेकार नहीं पैदा की, हत्ता कि सांप और बिच्छू और इस तरह की चीजें जो इंसान को बजाहर नुकसान देने वाली हैं, लेकिन उसमें भी फायदा है, क्योंकि ये मोजी जानवर अगर ना हो तो ये छोटी छोटी चीजों को ना खत्म करें। ये एक से एक दूसरे को नुकसान देती है। तो हमारे लिए इस पूरे रुकू में सबक यही है कि अल्लाह ने तुम्हें चूंकि पैदा किया है तो उसके हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करो। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें बंदगी के रंग में रंग ले। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़त यम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ पे तिलावत सुनते हैं।
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.